आज का इंट्रोडक्शन, टुडे इज सेवेंथ ना, सेवेंथ दिसंबर 2023, टाइम इज अबाउट 5:40 पीएम इन लखनऊ। आई एम अमित सर, विद मी अंकित सर, ऑन बिहाफ ऑफ द समित लाइन शूट, वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अवर सेकेंड लेक्चर ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। This is our second lecture and it is in the series of contribution by us towards the Delhi Judicial Examination। और general knowledge के लिए भी थोड़ा सा जानकारी होनी ही चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने 4 लेक्चर आर्बिट्रेशन के इस सीरीज में और 2 लेक्चर डेडिकेट किया था कि 2 लेक्चर लिमिटेशन का होगा। कल हमने लिमिटेशन स्टार्ट किया था, थोड़ा सा कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया। इन 32 सेक्शंस में हम लोगों ने स्टार्ट के कुछ सेक्शंस लिए, जिसमें एक 5 मिनट का आपको अगर हम लोग रिवीजन करें तो थोड़ा सा दिमाग में रखिए। मैंने इसमें पंचलाइन बोली थी कि लिमिटेशन एक्ट एंड्स द रेमेडी नॉट द राइट, बट टुडे इज डेट फॉर इट्स एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज सेक्शन 27, अभी पढ़ाएंगे। एक ऐसा राइट है जिसको ये एक्सटिंग्विश करता है। जनरल रूल ये है कि लिमिटेशन एक्ट एक्सटिंग्विशेस द रेमेडी बट नॉट द राइट, एक्सेप्शन इज सेक्शन 27, वो अभी हम पढ़ाएंगे। फिर हम लोगों ने कहा था जनरली ये लिमिटेशन एक्ट प्लेंटिव को बार करता है, डिफेंडेंट को नहीं। नेक्स्ट था सेक्शन 3 के हिसाब से, इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू सी वेदर द सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन और नॉट, ऑल्दो द डिफेंडेंट हैज नॉट टेकन द प्ली। डिफेंडेंट ने इसका डिफेंस ना भी लिया हो तो इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू डिसमिस द सूट। क्लियर है ना सबको? ये लिमिटेशन एक्ट सूट अपील और एप्लीकेशन पे लगता है। जनरली ये सिविल लॉस पे लगता है, एक्सेप्शनली कुछ अपील्स पे क्रिमिनल मैटर में लगता है। जनरली ये सूट्स अपील एप्लीकेशन पे लगता है, स्पेशल लॉस पे नहीं अप्लाई होगा जब तक कि उसमें ना लिखा गया हो, जैसे कि आर्बिट्रेशन एक्ट उस पे अप्लाई होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इसमें सेक्शंस पढ़े, डिफिनीशन पढ़ा, जिसमें से मेन था सेक्शन 5। ऑल्दो लिमिटेशन पीरियड बार हो गया, एंड हो गया, जो प्रिस्क्राइब था वो एंड हो गया, उसके बाद भी सेक्शन 5 की अगर हम लोग अप्लीकेशन दें, इफ वी फाइल एन अप्लीकेशन इन अ कोर्ट जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है टू फॉर द पर्पस ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले, तो सेक्शन 5 में अगर हमने भेजा था रीजनेबल कॉज है, सफिशियंट रीजन है, तो डिले कंडोन्ड हो जाता है। बट सेक्शन 5 सूट्स पे नहीं लगेगा, ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन पे नहीं लगेगा, केवल लगेगा एप्लीकेशन और अपील पे। सूट्स के लिए मैंने बोला था, हम लोग पढ़े थे ना 7-6 ऑर्डर 7 रूल 6 में, वहां जाकर आप कंडोनेशन डिले कराइए, वो ज्यूरिसडिक्शन ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन पे अराइज होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए आए कि 3 सेक्शन ऐसे हैं जो आपकी लिमिटेशन को होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सेक्शन 9 पढ़ा। सेक्शन 9 कहता वंस लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट इट नेवर स्टॉप, एक बार चालू हो गया तो ये रुकेगा नहीं, मगर अगर इनिशियल डिसेबिलिटी है, अगर जिस समय कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, अक्रूड हो रहा है, अगर उसी समय इनिशियली द पर्सन इज डिसेबल्ड, लीगली फिजिकली नहीं, लीगली, और लीगली डिसेबल्ड का मतलब होता है माइनर, ल्यूनेटिक या इडियोसी, तो जब तक वो डिसेबल्ड है, जब तक कि उसकी डिसेबिलिटी नहीं खत्म हो जाती, तब तक कि आपका लिमिटेशन पीरियड होल्ड पे आ जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो जब तक दोनों एंड नहीं हो जाएगी तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। ये मैंने तब सेक्शन 6 पढ़ाया जब मैंने कहा कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड द पर्सन द क्लेमेंट वाज डिसेबल्ड, अगर उस समय वो एबल्ड था, बाद में डिसेबल्ड हो गया, तो नो कहता ये रुकेगा नहीं, वंस स्टार्ट नेवर स्टॉप, याद है सबको। सेक्शन 7 कहता था, इसके आगे हम लोगों ने सेक्शन 7 पढ़ा कि कई क्लेमेंट हैं, कुछ डिसेबल्ड हैं लीगली, कुछ एबल्ड हैं, तो कॉज ऑफ एक्शन यानी लिमिटेशन पीरियड यहां पर कहता, अगर जो एबल्ड है वो अगर डिस्चार्ज देने के लिए सबके बिहाफ पर डिस्चार्ज दे सकता है तब तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो औरों के बेसिस पर डिस्चार्ज नहीं दे सकता है, ज्वाइंट क्लेम है, अगर ज्वाइंट क्लेम सेपरेबल है तब तो डिस्चार्ज दे सकता है, ज्वाइंट क्लेम इनसेपरेबल है तो डिस्चार्ज नहीं दे सकता। तो अगर डिस्चार्ज नहीं दे सकता सबके बिहाफ पर तो लिमिटेशन पीरियड तब तक रुका रहेगा, स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि सभी एबल्ड, हमने माँ और बच्चे वाला बताया था, एक एक्सीडेंट वाला इलस्ट्रेशन भेजे थे ना आपको, तीनों भेजे थे। 8 कहता है, सेक्शन 8 आगे चल के कहता है ऊपर जो लिखा वो सब भूल जाओ, केवल डिसेबिलिटी के केस में एक्सटेंशन एक्सटेंडेड फॉर 3 years, केवल कितने साल के लिए आपको एक्सटेंशन मिलता है, 3 साल, या अगर ओरिजिनली आपका कुछ बाकी है तो वो मिल जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना दे रहा है, 3 years। ये किस सेक्शन में पढ़े थे, 8 में। 9 में कह रहा था वंस स्टार्ट नेवर स्टॉप। 10 में आते आते सेक्शन 10 निकाल लीजिए क्योंकि आज फिनिश भी करना है ना, कर देना ठीक है, क्योंकि कोई कह रहा था कहीं जुडिशरी आ गई उत्तर प्रदेश की, तो ठीक है आएगी तो है ये, मगर कब आएगी, किस ईयर में आएगी ये पक्का नहीं है, इस साल तो नहीं आएगी फिलहाल।
सेक्शन 10 सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स।
देखिए ट्रस्टीज, सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी पे तो ये लिमिटेशन नहीं लगेगा ना, बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट क्या सफर करेगा, नहीं तो देखिए,
नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन हुम प्रॉपर्टी हैज बिकम वेस्टेड इन ट्रस्ट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस और अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइंस नॉट बीइंग असाइंस फॉर वैल्यूएबल कंसीडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग इन हिज और देयर हैंड्स such property or the proceeds thereof or for an account of such property or proceeds shall be barred by any length of time.
Kara, no limitation act, the provisions of limitation act will not apply on trust property. ऐसा नहीं होगी 12 साल तक हमने नहीं केस किया बेनिफिशियरी के रूप में तो हमारा क्लेम खत्म हो गया, ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे ये लिमिटेशन एक्ट अप्लाई ही, ऐसे आप एक लाइन में याद रखो, पंच लाइन, नो टाइम पीरियड इज प्रिस्क्राइब फॉर द रिकवरी ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी अनलेस एंड अनटिल सच प्रॉपर्टी कम अंडर द हैंड ऑफ बोनाफाइड परचेजर, वो एक अलग बात है, मगर जनरली आप कहें तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे सेक्शन 10 कहता है नो टाइम ऑफ लिमिट इज प्रिस्क्राइब फॉर ट्रस्ट प्रॉपर्टी, बेनिफिशियरी कभी भी ट्रस्टी से अपनी प्रॉपर्टी की डिमांड कर सकता है, और ऐसा नहीं कि ट्रस्टी का इतना दिन हो गया अब आपको हम कुछ नहीं देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ट्रस्ट एक कॉन्फिडेंस, एक रिपोज किया जाता है, ओनर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्टी को देता है एक कॉन्फिडेंस के थ्रू फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी, तो उसका कभी भी कॉन्फिडेंस लिमिटेशन पीरियड नहीं तोड़ेगा। सेक्शन 11,
सेक्शन 11 suits on contracts entered into outside the territories to which the act extends. Subsection 1, suits instituted in the territories to which this act extends or contracts entered into in the state of Jammu and Kashmir or in a foreign country shall be subject to the rules of limitation contained in this act.
Bhai, rule of lex fori hai na? भारत में अगर आप कोई फॉरेन में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका इन्फोर्समेंट ब्रीच इंडिया में आप क्लेम कर रहे हो तो फिर इंडिया की लॉ लगाएंगे ना, ऐसा नहीं कि आप कहो नहीं सर अमेरिकन लिमिटेशन एक्ट लगाइए, और उस हिसाब से हमारा लिमिटेशन पीरियड बार हो गया या नहीं हुआ, नहीं। इंडिया की कोर्ट कौन सा लिमिटेशन एक्ट फॉलो करेगी? द लिमिटेशन एक्ट 19। तो यहाँ सेक्शन 11 बस एक लाइन में ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो इंटर्ड इनटू आउटसाइड द इंडिया बट इट इज मेन फॉर द इन्फोर्समेंट एंड एग्जीक्यूशन इन इंडिया फॉर वॉट एवर पर्पज द लिमिटेशन एक्ट ऑफ इंडिया विल बी अप्लीकेबल रूल ऑफ लेक्स फोरी। ना यहाँ का फोरम है, लॉ यहाँ का लगाओ ना कि विदेश का। 12
इसका सबसेक्शन 2 वगैरह पढ़े
क्या जरूरत है? कौन सा यहाँ कोई सीरियस बैठा है दिल्ली देने जा रहा है? सब कह रहे हैं बस फिनिश हो जाए ना बेटा, गलत कह रहे हैं? सही हम जांच रहे हैं।
पार्ट थर्ड, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन।
अब देखो यहाँ से कंप्यूटेशन चालू हो रहा है, गणना। कुछ कंप्यूटेशन में कुछ चीजों को डिडक्ट किया जाएगा, जैसे कि गलत कोर्ट में चले गए या कोर्ट ने खुद ही इंजंक्शन इशू कर दिया, इस तरह की चीजें हैं। तो फिर वहां कंप्यूटेशन में कुछ चेंजेस आते हैं। कंप्यूटेशन मतलब काउंटिंग। हाँ देखिए
सेक्शन 12, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। सबसेक्शन 1, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन द डे फ्रॉम सच विच सच पीरियड इज टू बी रेकंड शैल बी एक्सक्लूडेड।
जिस दिन से ना मानो 10 तारीख से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा, तो 10 तारीख को क्या कर देना? एक्सक्लूड कर देना। याद है रिमांड में भी तो पढ़ाए थे आपको, जिस दिन रिमांड, जिस दिन जो चीज की जाती उस दिन को उसमें जोड़ते नहीं, तो जिस दिन स्टार्ट हो रहा उस दिन आप मत करिए, उसके बाद से जोड़ना शुरू करिए।
सबसेक्शन 2, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिवीजन और फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वॉज प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द डिक्री सेंटेंस और ऑर्डर अपील फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यूड शैल बी एक्सक्लूडेड।
कह रहा है जो समय आपको ना, जैसे आपको अपील करना है तो अपील के लिए आपको डिग्री की कॉपी चाहिए होगी ना, और जजमेंट की कॉपी आपको अगर निकलवाना सर्टिफाइड तो उसमें 5-6 दिन लगता है ना। तो जितना दिन कोर्ट ने आपको कॉपी देने में या कोई परमिशन लेने में जितना भी समय लिया, उतना दिन उसमें से लिमिटेशन पीरियड में से क्या कर दो, डिडक्ट कर दो। भाई मानिए अपील करने का आपके पास 30 दिन का समय था, सर्टिफाइड जजमेंट की कॉपी 6 दिन में निकली, तो उस 30 दिन में 6 दिन क्या कर देंगे, हटा दीजिए। जिस दिन जजमेंट आया 6 दिन उसको हटा दीजिए, अब उस दिन से स्टार्ट करिए। तो यहाँ यही कह रहा है कि कोई कागज पत्तर अगर कोर्ट से निकलवाना है और उसमें जो समय लगा है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक।
सबसेक्शन 3, वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यूड और वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर लीव टू अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द जजमेंट शैल आल्सो बी एक्सक्लूडेड।
ये सब एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है।
4th, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। एक्सप्लेनेशन
बस छोड़ दीजिएगा इसको, बस इतना ही। जितना कोई अवार्ड जजमेंट एटसेट्रा इसकी कॉपी लेने में, भाई कोई भी अपील सेट असाइड रिवीजन करना, तो जो आपको कॉपी लेने में कोर्ट ने समय लगाया वो लिमिटेशन पीरियड से क्या कर दीजिए, उसको डिडक्ट कर दीजिए, उतना समय उसको लिमिटेशन में हम लोग ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट 13।
सेक्शन 13, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केस वेयर लीव टू शू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर।
अच्छा, पॉपर सूट ऑर्डर 33 है, सीपीसी में पढ़ाएंगे। तो ऑर्डर 33 में पॉपर, मान लीजिए कोर्ट फीस देना होता है ना हर आदमी को, कोर्ट देखो ऐसा नहीं आपकी मदद करती है, कोर्ट सबसे पहले क्या चेक करती है, वेदर यू हैव पेड अ कोर्ट फीस। तो जब कोर्ट फीस आपको देना, मान लीजिए कोर्ट फीस बराबर, अगले के पास पैसा ही नहीं है, वो 1,00,000 रुपया क्लेम कर रहा है और मगर उसको देना है कोर्ट फीस 4,000-5,000 रुपया, उसके पास है ही नहीं, तो पहले क्या एप्लीकेशन लगाए कि सर हमको इंडिजेंट डिक्लेयर करिए। क्या डिक्लेयर करिए? इंडिजेंट, और हमको अलाउ करिए कि हम बिना कोर्ट फीस के स्टार्ट करें, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन हमारा बीता जा रहा। हाँ, जब हम जीत जाएंगे तो हमारे पहले आपका क्लेम हो जाएगा, पहले आप अपना कोर्ट फीस ले लेना, तब उसमें से काट छाट के हमारा पैसा देना। ठीक, इसके लिए ऑर्डर 33 में एक अप्लीकेशन जाती है, अप्लीकेशन फॉर फाइलिंग अ सूट एज इंडिजेंट। तो मानिए उस अप्लीकेशन को डिसाइड करने में एक साल लग गया, अप्लीकेशन है इसको डिसाइड करने में कितना समय लगा कि ये इंडिजेंट की तरह फाइल करें या ना करें, इसमें मानिए एक साल लग गया, तो ये उस लिमिटेशन पीरियड से एक साल क्या कर दो, डिडक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये कोर्ट की में ही तो चल रहा था। तो देखिए 13
सेक्शन 13, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट और अपील इन एनी केस वेयर एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू सी और अपील एज अ पॉपर हैज बीन मेड एंड रिजेक्टेड द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ हिज एप्लीकेशन फॉर सच लीव शैल बी एक्सक्लूडेड एंड द कोर्ट मे ऑन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच सूट और अपील treat the suit or appeal as having the same force and effect as if the court fee had been paid in the first instance।
देखिए कह रहा indigent में जितना समय लगा ना, जितना समय लगा उसको क्या कर दो आप लोग, exclude। देखिए हमने क्या बताया, ये पूरा कम exclusion का समय दे रहा है, चाहे 12 में चाहे 13 में, देखो तो ध्यान से, ये पूरा दे रहा है कि कितना period को हम लोग क्या कर दें, exclude कर दें। हाँ बेटा, एकदम सही तुम कह रहा। देखो हम लोग पढ़े थे कि अगर वो एप्लीकेशन पढ़ गई, मगर एप्लीकेशन जो पढ़ी ना, अगर आपको एक साल बाद रिजेक्ट हो गया, दिक्कत कब होगी, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मान लेते हैं ना, उसी एप्लीकेशन को क्या ट्रीट कर देते हैं, प्लेट मान लेते हैं। मगर अगर आपका रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्शन जो हुआ, रिजेक्शन होते ही अब प्रश्न ये उठेगा कि फिर वो तो एप्लीकेशन थी, इसीलिए इसने क्या कह दिया सेक्शन 13 ने, इन द केस योर एप्लीकेशन ऑफ इंडिजेंट रिजेक्टेड, अगर रिजेक्ट हो गया है तो फिर उतना समय क्या करा दो, डिडक्ट करा दो। 14
सेक्शन 14 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन। सब सेक्शन 1, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डेलिजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस और ऑफ अपील और रिविजन अगेंस्ट द डिफेंडेंट शैल बी एक्सक्लूडेड वेयर द प्रोसीडिंग रिलेट्स टू द सेम मैटर इन इश्यू एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ इन अ कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन और अदर कॉज ऑफ अ लाइक नेचर इज अनेबल टू एंटरटेन इट।
देखिए 14 कह रहा ना, अच्छा जनरली हमने देखा है 11, 12, 13, 14 पे क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन है ना वो 17, 18 और 19 पे है। जो डीजीएस में हमने क्वेश्चन देखे हैं वो 17, 18, 19, 21 और 25 पे है। दिस इज वाई हम इसको केवल आपको एक सिनॉप्सिस और समरी पढ़ा रहे हैं। 14 में भी कह रहा है अगर बोनाफाइड, मतलब एकदम बोनाफाइड तरीके से तुम किसी कोर्ट में गए और बाद में पता चला कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, तो जितना देर उसमें गलत में गया है वो भी उसमें से क्या कर दो, डिडक्ट कर दो। 15
सेक्शन 15 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस।
अदर केसेस में जैसे ना कोर्ट ने स्टे कर दिया, एक कोर्ट ने इंजंक्शन इशू कर दिया, इंजंक्शन इशू कर दिया और स्टे कर दिया मैटर, तो जितने देर स्टे किया इंजंक्शन किया वो भी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिडक्ट होगा। 15 भी हटा दो। 16
सेक्शन 16 इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूवल ऑफ द राइट टू सू।
इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और एक्रूवल बिफोर द एक्रूवल, आप तो अगर डेथ हो गई तो क्या होता है उसमें केस में भाई, जितने दिन बाद चालू होगा स्टार्ट हो जाएगा, अगर उसका एलआर वो है, अगर डिसेबल्ड है 16 में बच्चा है तो तब तक वेट कर लीजिए, 16 यही कह रहा है ना, बता दीजिए।
सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 वेयर अ पर्सन हु वुड इफ ही वर लिविंग हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन डाइज बिफोर द राइट अक्रूज,
डाइज बिफोर द राइट अक्रूज, ठीक है,
और वेयर अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन अक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम when there is a legal representative of a deceased capable of instituting such suit or making such application.
Clear है ना? देखिए कह रहा है, अगर cause of action जिस दिन से चालू हुआ उसके पहले ही claimant की death हो जाए, तो जब claimant की death हो गई और उस समय मानिए उसका कोई legal representative अभी minor था, तो cause of action रुक जाएगा ना section 6 के हिसाब से। कब तक रुकेगा? आप सब जानते हैं, जब तक कि वो मेजॉरिटी अटेंड नहीं कर लेता। तो ये सेक्शन 6 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है कि उस केस में जब मेन क्लेमेंट की डेथ, मगर अब आप एक चीज बताइए, इसको जस्ट पलट दें, एक्स है, एक्स के फेवर में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, मगर अभी उसने सूट फाइल नहीं किया था, 3 साल का मौका था। एक्स जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया उसके 6 महीने बाद एक्स की डेथ हुई, और 6 महीने बाद डेथ हुई और एक्स का बच्चा अभी 2.5 साल बाकी है, कितना बाकी है उसमें कॉज ऑफ 2.5 साल लिमिटेशन भी है, एक्स का जो बच्चा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो माइनर है, क्या लिमिटेशन पीरियड रुकेगा? नहीं। 9 क्या कहता है? वंस स्टार्ट नेवर स्टॉप, जब तक कि कॉज ऑफ एक्शन रिन्यू ना हो जाए। हाँ, अगर कोई अपील अपील हो जाए, अपील में तो आप जानते हैं अपील में तो रुक ही जाता चीजें, यहां सीधा कह रहा है कि डेथ कब हुई हो, कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होने के पहले, बाद में होगी तो ये रुकेगा नहीं। ये लॉजिक हमने आपको इसीलिए बार बार 6 और मेरे ख्याल से 9 है ना, 6-9 को एक साथ समझिएगा, डेथ हुई कॉज ऑफ एक्शन के बाद 9 लगेगा। नहीं देखो, कॉज ऑफ एक्शन मानो 10 जनवरी को स्टार्ट होना था, ठीक है, डेथ हो गई 10 जनवरी के पहले, ठीक, और जिसकी डेथ हुई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अब सूट फाइल करना, मगर वो माइनर है, तो अभी वो जब तक वो माइनर है वो 10 तारीख उतना साल क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, मगर वही 10 तारीख को कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, 11 को डेथ हो जाए, तब तो वो रुकेगी नहीं, चाहे वो माइनर हो चाहे अब माइनर है तो नेक्स्ट फ्रेंड से फाइल करे, यानी कॉज ऑफ एक्शन एक्रूड होने के बाद कभी भी कॉज ऑफ एक्शन रुकेगा नहीं, डेथ उसके पहले हो गई तो कॉज ऑफ एक्शन रुक सकता है एज पर द डिसेबिलिटी ऑफ सेक्शन 6, ठीक है। और चलिए फ्रॉड,
इसको सेक्ट 2 और 3 छोड़ देना,
अब 3 सेक्शन आ रहा है बैक टू बैक ये पढ़ने वाले।
सेक्शन 17 इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक,
17 तो फ्रॉड याद रहेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड कौन सा सेक्शन है, 17, यहाँ भी फ्रॉड देखिए कितना अच्छा डिजाइन किया है, यहाँ भी किस सेक्शन में फ्रॉड रखा गया, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड से कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले ली गई है तो उसको कैंसिल करने का कॉज ऑफ एक्शन यानी प्रिस्क्राइब पीरियड किस दिन से चालू होगा, जब तक हम नॉलेज या हमें डिस्कवर, तो द मूवमेंट किस दिन से प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड किस दिन से होगा, भैया जिस दिन हमको पता चला ना, हमको 50 साल बाद पता चला कि यार हमारे साथ हमारे दद्दा के साथ तो फ्रॉड किया गया था, है ना, समोसा चटनी खिला के वो ले गए पूरा, अब हमें पता चला कि उस समय से में कुछ मिलाए थे वो खा के एकदम मस्त आ गए, ठीक, हमको 50 साल बाद पता चला, क्या हम सेटिसाइड नहीं कराएंगे, वंस फ्रॉड ऑलवेज फ्रॉड, ध्यान रखिएगा फ्रॉड से ली गई प्रॉपर्टी पे कोई लिमिटेशन पीरियड, जिस समय मुझे नॉलेज होगा उस दिन से सेटिसाइड करने के लिए 3 साल या 12 साल जो भी आपका लिमिटेशन उस दिन से चालू होगा, द मोमेंट द डे फ्रॉम विच आई गेट नॉलेज ऑफ सच फ्रॉड और मिस्टेक द लिमिटेशन पीरियड स्ट्राइक, अगर हमें नहीं पता है तो हमें पता है, भाई आप ही लोग का होगा, वैसे सारे अकाउंट में तो पैसा आता है तो मेरे ख्याल से मैसेज आता है, मगर जरूरी नहीं सब में मैसेज आए, मानिए आपके पास कई अकाउंट हैं, ईश्वर की आपके पर अनन्य कृपा है, होती है, कई लोग के ऊपर कृपा होती है, कई लोग अपना सरकारी नौकरी ही ईस्ट इंडिया कंपनी बना लेते हैं, होती है, वो तो आपके ऊपर है कैसे आप सोच रखते हैं। तो अब मानिए आपके किसी अकाउंट में 50 लाख रुपया था, कोई उड़ा दिया। अच्छा, हर दिन जाके पासबुक तो अब आप इंटर, आप 4-5 साल बाद आपको लगा यार जरा सबसे अकाउंट में देख लें, अरे देखा तो पार हो चुका है, और कुल फ्रॉड के लिए 3 साल था समय, तो क्या 3 साल बाद अब वो हीरो बन के घूमे? नहीं भाई, फ्रॉड जिस दिन हमारा नॉलेज हुआ उस दिन से हमारा लिमिटेशन पीरियड क्या होगा? सेक्शन 17
इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, सब सेक्शन 1, वेयर इन द केस ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर विच अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट, ए द सूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट और इज एजेंट, और बी द नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच अ सूट और एप्लीकेशन इज फाउंडेड इज कंसील्ड बाय द फ्रॉड ऑफ एनी सच पर्सन एज अफोरसेड, और सी द सूट और एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ मिस्टेक, और डी वेयर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द राइट ऑफ द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज बीन फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड फ्रॉम हिम, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगिन टू रन until the plaintiff or applicant has discovered the fraud or the mistake or could with reasonable diligence have discovered it, or in the case of a concealed document until the plaintiff or the applicant first had the means of producing the concealed document or compelling its production, provided that nothing in this section shall enable any suit to be instituted or application to be made to recover or enforce any charge against or set aside any transaction affecting any property which first in the case of fraud has been purchased for valuable consideration by a person who was not a party to the fraud and did not at the time of the purchase know or have reason to believe that any fraud had been committed, or second, in the case of mistake has been purchased for valuable consideration subsequently to the transaction in which the mistake was made by a person who did not know or have reason to believe that the mistake had been made, or third, in the case of concealed document has been purchased for valuable consideration by a person who was not a party to the concealment and did not at the time of purchase know or have reason to believe that the document had been concealed, subsection 2.
मोती हमेशा गहरे सागर में होता है, छिछले पानी में, सुने हो कभी कि ये तालाब में मोती पा गए? हमेशा मोती किस में होता है? कबीर दास कहते हैं ना, जितना गहरा डुबकी मारोगे उतनी ही गहरी चीजें लाओगे, बस निकलने में व्यवस्था रखना। कई लोग डुबकी मार जाते हैं, निकलते ही नहीं है ना, इतना ज्यादा पढ़ने लगते हैं कि यही नहीं समझ में आता काहे के लिए पढ़ रहे हैं, इतना भी डुबकी ना लगाना। ठीक है, तो इसकी गहराई देखिए, सेक्शन 17 क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। इतना कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिफेंडेंट ने फ्रॉड से ले लिया, मिस्टेकिंगली लिया है और डॉक्यूमेंट को कंसील कर दिया जिससे अगले को पता चले प्लेंटिव को कि हमारा कोई राइट वगैरह है, उसे छुपा दिया गया, पता चला उसी की सारी जमीन है और वही उस जमीन में खेती कर रहा है अदिया पे, क्योंकि उसके कजिन वगैरह ने क्या कर लिया, अक्सर होता है अगला अपनी ही मकान में किराया दे रहा है, उसे मालूम नहीं कि हम इसके मकान के हम ही मालिक हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उसके साथ कोई चीज कंसील की गई है या उसके साथ फ्रॉड किया गया है, तो फिर कह रहा है कैंसिलेशन कराने के लिए, रिकवर करने के लिए प्रॉपर्टी लिमिटेशन पीरियड किस दिन से चालू होगी? जिस दिन उसको नॉलेज हुआ, द डेट ऑन विच ही अवेयर रिगार्डिंग सच फ्रॉड और मिस्टेक, पहली लाइन तो याद रखना। दूसरा, मगर ये सेक्शन हम लोग जानते हैं, इक्विटी अगर आप पढ़े होंगे बोनाफाइड परचेजर के ऊपर कभी नहीं लगेगा। प्रोविजो इसका कौन है? अगर दो इनोसेंट व्यक्ति हैं तो जो ज्यादा इनोसेंट है कोर्ट उसकी मदद करेगी ना। व्हेन कोर्ट हैज, अब मानिए ए से एक प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली बी ने परचेज कर ली, फ्रॉड करके कि अरे ये तो तुम्हारा जमीन बेकार है, सब बैरन लैंड है, इसमें कुछ होना होना नहीं है और ये सब बेकार है, कुछ पता होता कि ऐसी चीजें, फ्रॉड करके उससे ले लिया, बहुत सस्ते में ले लिया। अब ए को जब उसके फ्रॉड के बारे में पता चलेगा तो कैंसिलेशन ऑफ डीड फाइल करेगा ना, ठीक। मगर ड्यूरिंग दिस कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जीक्यूशन ये डॉक्यूमेंट रहते रहते बी ने सी को जमीन बेच दिया और सी को इस फ्रॉड के बारे में एकदम नहीं मालूम है। सी ने पूरा कंसीडरेशन देकर उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, अब ए कैंसिल कराने जाएगा बी और सी के अगेंस्ट, तो क्या कोर्ट अब उसकी मदद करेगी? यहां सी को क्या कहोगे? बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू, पूरा पैसा देकर उसको इस चीज की नोटिस नहीं थी, तो अमंग ए एंड सी दोनों इनोसेंट हो गए ना। ए के साथ फ्रॉड हुआ और सी के साथ भी क्या हुआ है? मगर सी ने पूरा पैसा देकर केयरफुल होके खरीदा, तो कोर्ट अब किसकी मदद करेगी? यहां पर सी की। इक्विटी हमेशा ज्यादा इनोसेंट की मदद करती है और यहां ज्यादा इनोसेंट कौन है? सी। तो सेक्शन 17 कह रहा है तब नहीं लगेगा, तब ये लिमिटेशन पीरियड का एग्जेम्पशन आपने नहीं पाना है। बाकी ध्यान रखिए फ्रॉड वगैरह के मामले में ग्रेट ग्रैंडसन तक केस करे अप्लीकेबल हो जाता है, जितना भी लिमिटेशन पीरियड का एग्जेम्पशन वकील वगैरह लेते हैं, जब बीत उठ जाता और बहुत लंबा केस हो जाता तो यही सब तो लिया जाता है कि वी हैव नो नॉलेज रिगार्डिंग सच फ्रॉड और सच नॉलेज हमें मालूम ही नहीं था, हमें आज मालूम चला तब हमने सूट फाइल किया। ये सेक्शन 17 का यही जिस्ट है। और कुछ नहीं जानना है फ्रॉड किस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है? जब नॉलेज हो। मगर ये किसके लिए नहीं अप्लाई होगा? बोनाफाइड परचेजर। मेरे ख्याल से नोट्स में हमने वन लाइनर लिखा हुआ है, जो आप लोग को नोट्स भेजे हैं ऑनलाइन उसमें देखिएगा वन लाइनर सब लिखा हुआ है, अपने हिसाब से इसको ठीक भी कर लीजिएगा। 18 क्यों? बोनाफाइड परचेजर मानिए आपका 10 साल हो गया और कैंसिलेशन के लिए 3 साल था। अब आप 10 साल बाद कह रहे हैं हम जाने हैं सर कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो अब इसको आप लिमिटेशन पीरियड हमारा वेव करिए। और अगला कह रहा नहीं सर हम इसमें, अब हमारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, नहीं जाएंगे। हाँ विद इन लिमिटेशन पीरियड आप जा सकते हैं, वो तो सेट असाइड कराइए, आपका राइट है। आउटसाइड द लिमिटेड 18
सेक्शन 18 इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग।
एक्नॉलेजमेंट का मतलब एडमिशन, ये बहुत बार पूछा गया है। इफेक्ट ऑफ, अगर एक लाइन में आपको रटना है ना एग्जाम के लिए, इन राइटिंग बस रट लो, ओरल नहीं चलता है। एक्नॉलेजमेंट किसमें होना चाहिए? इन राइटिंग। एक्नॉलेजमेंट अगर कर दिया ना, मान लीजिए ए ने बी को कुछ पैसा वैसा उधार दिया है और रिकवरी के लिए 3 साल होता है, मनी रिकवरी का कितना दिन में होता है? 3 ईयर्स, ठीक है। ए ने कोई सूट नहीं फाइल किया, करीब 2 साल बीत गए, तब तक बी का एक लेटर आता है, उसको कुछ दिव्य ज्ञान हुआ होगा, तो बी का एक लेटर आता है कि डियर आई एम वेरी मच सॉरी, आई हैव टेकन मनी फ्रॉम यू इन अ फ्रेंडशिप बट आई हैव नॉट रिटर्न, मैं जल्दी ही रिटर्न कर, ये 2 साल बाद आया। जो ही वो एक्नॉलेजमेंट आया पूरा लिमिटेशन रिन्यू हो गया, नया काज ऑफ एक्शन हो गया। यानी जो ही रिटर्न एक्नॉलेजमेंट रिटर्न एडमिशन आया ना, उसी दिन से फिर से क्या स्टार्ट हो गया? अब वो उसको ए को कितना साल और मिल गया? 3 साल, यानी 2 साल फर्दर, उसी दिन से 3 साल नया मिल गया। इसी कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है एडमिशन इन राइटिंग। हमने एडमिट कर लिया कि हमने आपसे पैसा लिया था और जल्दी ही हम व्यवस्था करके आपको पैसा वापस कर देंगे। जो ही ऐसा लेटर आया तो अगर एकदम एंड भी होने वाला होगा काज ऑफ एक्शन, उसी डेट से क्या हो जाएगा वो? इसीलिए देखिए हम लोग, नहीं होता कि किसी से पार्टी ओटी की तय रहती है, तो जब भी मिलते हैं भाई पार्टी बाकी है ना, पार्टी बाकी है।
से बात हुई थी, लिटिगेशन ज्वाइन कर
लिया। अरे वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, वो तो आप उससे एडवाइस ले तो हमसे भी QR कोड देता है मजा तो वो है जब चेला अपने गुरु को ही चूना मारे। हाँ रे, ये खासियत होनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म इज प्रोफेशनलिज्म, नेवर मिक्स द प्रोफेशनलिज्म विद ये फेमलिज्म। बर्बाद वही लोग होते हैं, हाँ बर्बाद वही लोग होते हैं जो प्रोफेशनलिज्म के साथ अपनी प्राइवेट चीजों को मिक्स करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल होना चाहते हैं तो हमेशा क्या करिए भाई, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो पुरानी बात मसल है इसमें। चलिए हाँ 18
से यारी करेगा तो
यारी है ना, हाँ वही चना खाएगा सही तो कहेगा।
इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर अ सूट और एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट हैज बीन मेड इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी अगेंस्ट हुम सच प्रॉपर्टी और राइट शांत बाबू शांत क्लेम और बाय एनी पर्सन थ्रू हुम ही derives his title or liability, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed.
देखिए, जिस बंदे की लाइबिलिटी थी उसने अगर इन राइटिंग एक्नॉलेजमेंट कर दिया, एक्नॉलेजमेंट इन मैंने क्या कहा, लाइन याद रखना, इन राइटिंग पहली चीज है कि वो कोई लाइबिलिटी थी, जिसकी लाइबिलिटी थी उसने या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने एक्नॉलेजमेंट भेजा विद इन अ लिमिटेशन पीरियड भेजा, तो जिस दिन एक्नॉलेजमेंट आया, मैंने बेस्ट एग्जांपल लिया, 3 साल का था, 2.5 साल के बाद एक लेटर आता है बी की ओर से, डेटर की ओर से कि आई एम सॉरी फॉर डिले, आई विल अरेंज मनी एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक, जिस दिन आया उसी दिन से नया काज ऑफ एक्शन और फिर से 3 साल को आपको क्या मिल गया, एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड। 18 बहुत पूछा जाता है, 18 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो 18 इस पे कह रहा और 19 इसी के साथ जुड़ जाता है। 19 कहता है कि अगर पेमेंट ऑफ मनी का मामला है, ठीक है, और मान लीजिए 3 साल में पेमेंट करना था, 3 साल में पेमेंट तो नहीं हुआ, मगर 3 साल बीतते बीतते जो डेटर है वो कुछ इंटरेस्ट पेमेंट कराता है, यानी डेटर एक मान लीजिए 1,000 रुपया लिया था उधार, नहीं दे रहा है, तब तक उसकी ओर से या उसका लड़का 100 रुपया ला के देता और इन राइटिंग देता है लिख के कि हम आपको 100 रुपया इंटरेस्ट के रूप में पे कर रहे हैं, रिमेनिंग बाद में दे देंगे। जो ही वो पेमेंट हुआ इन राइटिंग, फिर वर्ड नया काज ऑफ एक्शन ये 19 करा, ये रीपेमेंट पे हो रहा है, मगर रीपेमेंट ओवरली नहीं, हम आपको आगे 100 रुपया दे दें और कहते बाकी हम बाद में आके पहुंचवाएंगे, तब क्या बढ़ेगा? पूरा खेल 18 और 19 का क्या है, एक्नॉलेजमेंट या रीपेमेंट इन राइटिंग, लिखित होना चाहिए। 19 देख लीजिए,
सेक्शन 19, इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लिगेसी। Where payment on account of debt or of interest on a legacy is made before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or legacy or by his agent duly authorized in this behalf, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made, provided that. Save in the case of payment interest made before the first day of January 1928, an acknowledgement of the payment appears in the handwriting of or in a writing signed by the person making the payment. Explanation for the...
1928 के पहले oral भी चल जाता, अब इतना पुराना लेने की जरूरत है क्या, कोई है यहाँ 28 वाला? नहीं होगा ना। 1928 क्या करना है, 1928 के पहले की बात अलग है, 1928 के बाद जो भी पेमेंट होना चाहिए उसके साथ इन राइटिंग होना चाहिए। वैसे भी ये जो पढ़ रहे हो तुम लोग, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, देखिए कब का इन्फोर्समेंट है, 1 जनवरी ये रिटायर हो जाएगी, 60 साल हो जाएगा अगले साल, 60 साल हो जाएगा ना, देखिए तो रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, ये 60 ही आ जाएगी। लिमिटेशन पीरियड 1 जनवरी को क्या हो जाएगी है? ये 60 ईयर्स की हो जाएगी अनरियली, ठीक है। तो अब देखिए इतना पुरानी बात क्या करना, हमने आपको 18-19 का एकदम क्रक्स बताया, एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग 18 में और रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मनी प्रोवाइडेड इट मस्ट बी इन राइटिंग। 1928 के पहले पुराना एक्ट चलता था, वहाँ ओरल भी चलता था, अब सब कुछ किसमें होना चाहिए, इन राइटिंग आर साइन। तो ये 18 और 19 एक साथ पढ़ा जाता है, इन दोनों में जो हमारा जो क्रक्स था वो इन राइटिंग था। अब हम 21 पढ़ाने चल रहे हैं, 21।
सेक्शन 21, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट।
ये प्रीमिस हो जाता है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज। 1 जनवरी को एक सूट फाइल हुआ है, 6 महीने बाद उसमें एक नया प्लेंटिफ जोड़ा गया, क्योंकि वो भूल गए थे, कॉज ऑफ एक्शन था तो उनको जोड़ा गया। अब जब 6 महीने बाद प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को आपने एक नया ऐड किया है, तो उस प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के लिए सूट किस दिन से माना जाए, 1 जनवरी से कि 6 जून से, 1 जून से, इसी रूल को बता रहा है, कह रहा है नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जनरली ये किस दिन से, जिस दिन पार्टी ऐड हुई है, प्रीकली याद रखो, जिस दिन कोई नई पार्टी ऐड हुई है डेट उसी दिन से कमेंस माना जाएगा उसके लिए। देखिए ना,
सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21, वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज सब्स्टिट्यूटेड और एडेड, द सूट शैल एज रिगार्ड्स हिम बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज सो मेड अ पार्टी।
व्हेन ही वाज suit has been instituted with regard to such new plaintiff or dependent when he was made party, यही प्री में आता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। हमने क्या कहा, सूट चालू हुआ 1 जनवरी को, एक नई पार्टी एड की गई है 1 जून को, तो उस नई पार्टी के लिए सूट किस दिन से माने, 1 जनवरी से कि 1 जून से, तो 1 जून जिस दिन बेटा वो पार्टी बनी है, किस दिन पार्टी बनी है, 1 जून। ये सब प्रैक्टिकली याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब एग्जाम्पल घर पे जाके रिकॉर्ड वगैरह लेके रिकॉर्डिंग सुन के इसको नोट करिएगा, नहीं तो ऐसे ये बहुत जल्दी क्या होगा ये, क्योंकि हम तो भूल ही जाएंगे, हमें याद करने की जरूरत है, हम फिर एविडेंस पढ़ेंगे, CPC पढ़ेंगे, और ये अब क्यों पढ़ाएंगे, अभी तो हमारे पास रहेगा, जो कोई नया मांगेगा क्या कर देंगे, कह देंगे ले जाओ इसको सुनो, गाना सुनते हो, ऑडियो स्टोरी सुनते हो, विक्रम भट्ट की तो इसकी भी सुन लो, हाँ रेडियो में आता है।
हाँ,
इसलिए क्योंकि लिमिटेशन पीरियड का आप एग्जेम्पशन ना माने, 6 महीने बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं और कहते हैं कि साहब हमारे लिए लिमिटेशन तो खत्म हो गया, मगर हमको आप 1 जनवरी से पार्टी मान लो, तो क्या कोर्ट मानेगी, कहीं कहाँ थे आप भाई, आपको आना था तो कब तक आ जाना था। तो सबके जिस दिन नई पार्टी बनी है उसी दिन से, तो देखिए एक बार फिर पढ़ दीजिए इसको। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, एक्सेप्शनली कुछ मामलों में डिफेंडेंट के लिए भी लगता है। बेटा कब लगेगा वो, जब आप लोग CPC पढ़ेंगे ना, डिफेंडेंट जब सेट ऑफ या काउंटर क्लेम करता है तो वो प्लेंटिफ हो जाता है। When defendant claim the set off or counter claim, then he deemed as a, ये उसके लिए है। तो ये जब set off का, तो generally this limitation act apply against the plaintiff, but exceptionally in some set off and counter claim cases when defendant acted as a plaintiff and plaintiff acted as a defendant, in such situation this will apply। हाँ और चलिए
फिर सबसेक्शन 1 फिर से पढ़ दें,
एक बार बस पढ़ दीजिए, हो गया।
सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21, वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज सब्स्टिट्यूटेड और एडेड, द सूट शैल एज रिगार्ड हिम बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज सो मेड अ पार्टी प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द omission to include a new plaintiff or defendant was due to a mistake made in good faith, it may direct that the suit as regards such plaintiff or defendant shall be deemed to have been instituted on any earlier date.
अब वो मिस्टेक वगैरह वाला मत ध्यान रखिएगा, आपको केवल क्या याद रखना है जो मैंने वो फिर 12 ओरा से हो जाएंगे ना, इसीलिए हम उधर नहीं ध्यान दे रहे, हम केवल कह रहे हैं कि जब सूट ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हो गया और नई पार्टी बनी है तो प्री में आएगा, उस नई पार्टी को किस डेट से पार्टी माने, जिस दिन से वो ज्वाइन किया, जिस दिन से वो ऐड किया, ये बस याद रखना आपको 21 में। अब हम लोग आ रहे हैं 25।
पार्ट फोर्थ, ये नहीं पार्ट 24 नहीं, 24 कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स, जॉर्जियन कैलेंडर,
जॉर्जियन कैलेंडर से
ये ग्रेगोरियन, सॉरी जॉर्जियन बोले, ग्रेगोरियन ये
जॉर्जियन नहीं, ग्रेगो, ये जो कैलेंडर होता हम लोग का कौन सा होता है, शायद ग्रेगोरियन होता है ना, ये जो हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग कैलेंडर, वो कौन सा होता है, तो ऐसा कोई आप कहें सर हम हिंदी वाले से विक्रम संवत से बताएंगे तो वो तिथि उथी नहीं चलेगी, तिथि तो जीने मरने के लिए होती है ना, ये लिमिटेशन के लिए कौन सी होती है, ग्रेगोरियन ना, थोड़ा कमजोर है मैटर, ठीक है। हाँ कोई ऐसा मेलोडी तो है नहीं हमारे पास कि हमारा हमारा भी ऐसा कोई मित्र मिल जाए तो हमारी भी अंग्रेजी अच्छी हो जाए, है ना, यहाँ जितने मित्र मिले सब देहाती मिल रहे हैं, हिंदी भी हमारी बिगड़ी जा रही है, कहीं फॉरेनर फ्रेंड वन मिल जाए कोई फिर देखिए हमारी अंग्रेजी ऐसी बनेगी कि बहुत, अरे इतना नहीं तुम यार प्रेमानंद, इसीलिए इसको ओमानंद की जगह हमने क्या शुरू कर दिया, ये सामूहिक बातें बहुत ध्यान रखना, अपना नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं, गुड बॉय, हाँ गहरे मोटर
नहीं सबके बारे में सोचता है,
ये प्रेमानंद की क्वालिटी है ये कि अपना छोड़ दुनिया के बारे में देखो, तुम ये प्रवचन करो, तुम वो करो, तुम ये किया करो, अरे अपना देखो यार, अगला तो अपना खुद ही देखेगा, व्यवस्था करेगा, कितना भगवान आए, कितना गुरु महात्मा आए, किसी ने सुधरा आज तक न, सुधरा है न, क्योंकि हम जिस तरह के हैं वो भी बेटा, हम जिस चीज के लिए आए वही करेंगे, सीधी बात है, अगर हम चोरी डकैती के लिए आए तो हम कहां से वहां संत महात्मा बनेंगे, प्रकृति ने जिसको जिस लिए बनाया है वो वही काम करेगा, चाहे जो बैठा दो, ये तो समझ लो।
पार्ट फोर, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन,
एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन, अब हम लोग पार्ट फोर पे आ रहे हैं, और 25 और 27 ये दो सेक्शन पढ़ना, मैंने कहा था 27 किसका एक्सेप्शन है, उस जनरल रूल का कि ये लिमिटेशन एक्ट रेमेडी बार करती है, राइट बार, बस 27 में राइट भी बार हो जाता है। लेट अस स्टार्ट द रूल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ईजमेंट हम लोग पढ़े हैं ना या पढ़ेंगे, जब ईजमेंट में सेक्शन 15 पढ़ते हैं तो कहते हैं ना राइट टू यूजर, अगर आप पीसफुली ओपनली कोई राइट टू वे, राइट टू लाइट, राइट टू एयर, राइट टू सपोर्ट, ये आप बड़े आराम से 15-20 साल से ये काम कर रहे हो, कोई रोक, आप किसी और की लैंड से आ जा रहे हो, ओपनली जा रहे हो, पीसफुली जा रहे हो, इन अन इंटरप्टेड जा रहे हो, 20 साल तक आपने वो काम कर लिया, 20 साल तक लाइट एयर या वे रास्ता आपने यूज के लिए, राइट टू यूजर है, अब आपको एक राइट अक्रूड हो रहा है, राइट टू प्रिस्क्रिप्शन, और अब आपको कोई रोक नहीं सकता, अगर कोई रोके तो जिस दिन उसने रोका है उसके 2 साल के भीतर आप सूट फाइल करिए और राइट अपना क्लेम कर लीजिए, दिस इज द राइट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब इसके लिए प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट 20 साल और सरकार की जमीन वीन से लेना हो तो 30 साल स्टार्ट कर दीजिए।
सेक्शन 25 एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट्स बाय प्रिस्क्रिप्शन सब सेक्शन 1 वेयर द एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर टू एंड फॉर एनी बिल्डिंग हैव बीन पीसेबली एंजॉयड देयर विद एज एन ईजमेंट एंड एज ऑफ राइट विदाउट इंटरप्शन एंड फॉर 20 ईयर्स एंड वेयर एनी वे और वाटर कोर्स और द यूज ऑफ एनी वाटर और एनी अदर इजमेंट वेदर अफर्मेटिव और निगेटिव हैज बीन पीसेबली एंड ओपनली इंजॉयड बाय एनी पर्सन क्लेमिंग टाइटल देयर टू एज एन इजमेंट एंड एज और राइट एज और राइट विदाउट इंटरप्शन एंड फॉर 20 ईयर्स द राइट टू सच एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट ऑफ एयर वे वाटर कोर्स यूज ऑफ वाटर और अदर इजमेंट शैल बी एब्सोल्यूट एंड
इनडिफीजिबल एब्सोल्यूट 20 साल तक अगर हम 20 साल तक राइट टू लाइट हम बगल के प्लाट में आराम से खोलते हैं और ईस्ट उदस दिखता है सूरज देव को देखते हैं जल चढ़ाते हैं अपना खिड़की खोल रखे हैं केवल सूर्य को देख रहे हैं ठीक फ्रेश एकदम ना मतलब कुछ और न देखने को आराम से 20 साल हो गया ये काम करते करते है ना अब 20 साल जब पूरा हो गया 21वें साल अगला खूब बड़ी सी अपनी दीवार लगाने जा रहा उधर अब हम क्या राइट यूज करेंगे राइट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हम कहेंगे 20 ईयर से अनइंटरप्टेड मैं ये राइट इंजॉय कर रहा हूँ राइट टू लाइट एयर और राइट टू वे आप कहीं से आते जाते हैं वाटर कोर्स चैनल कुछ भी है जो एसेंशियल है लाइफ के लिए अब अगर अगला इंटरप्ट करेगा तो जिस दिन वो स्टार्ट करेगा उस दिन से 2 साल के भीतर हम इंजंक्शन सूट फाइल करके उसको रोक सकते हैं तो लिमिटेशन पीरियड 2 साल है कितना साल है जिस दिन आप पहले तो पहली कंडीशन क्या 20 साल अनइंटरप्टेड हो जाए ना तो आपका डिफिनिट हो गया एब्सोल्यूट वर्ड क्या लिखा है वो राइट एब्सोल्यूट इनडिफिजिएबल वर्ड लिख दिया यानी अब वो अब कोई हमसे छीन इनडिफिजिएबल अब डिफीट नहीं हो सकता है अजय हो गया एब्सोल्यूट इनडिफिजिएबल 20 साल पूरा हो जाए अब उसके बाद आप आराम से उसको चाहे यूज करो ना करो अब अगर कोई आपको अगर रोक रहा है तो जिस दिन रोक रहा है उससे 2 साल के भीतर डिक्लेरेशन लेकर अपना कंप्लीट करा लो आगे चलिए
सबसेक्शन 2 Each of the said periods of 20 years shall be taken to be period ending within 2 years next before the institution of the suit wherein the claim to which such period relates is contested.
2 साल ध्यान रखिएगा जिस दिन आपका right contest किया गया आपको रोका गया है उस साल से कितने साल के भीतर 2 साल के भीतर आपको suit file करके अपना टाइटल जो है ये राइट है इसको एब्सोल्यूट करा लीजिए कोर्ट के थ्रू ये राइट टू प्रिस्क्रिप्शन था और चलिए 27 देख लीजिए
इसमें एक और इसका एक्सप्लेनेशन भी है नथिंग इज एन इंटरप्शन विद इन अ मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन अनलेस वेयर देयर इज एन एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द पोजीशन ऑफ और एंजॉयमेंट बाय रीजन ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन By the act of some person other than the claimant, and unless such obstruction is submitted to or acquiesced,
ये clear पूरा पढ़ेंगे जब कब पढ़ाएंगे?
In for one year.
Easement में पढ़ना हाँ छोड़ दीजिए वो एक साल का है वो सब उतना नहीं पढ़ना हो तो easement में पढ़िएगा अभी 20 साल बस याद रखिए सरकारी land का नीचे लिखा होगा 30 साल सरकारी जमीन में easement लेना हो तो कितना साल अपने लोग को लेगा? We have to take this peaceful enjoyment for 30 years, 30 साल तक आप अगर करेंगे तो सरकारी वाले मिल जाएगा अब आइए नेक्स्ट सेक्शन
सेक्शन 26 की 27
so, 7 कितना बजा है अभी
हिसाब से अभी 6:33
बस ठीक है विद इन टाइम है हां ठीक
26 की 27
26 पढ़ा दीजिए अभी है
सेक्शन 26 एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनर ऑफ सर्वियंट टेनमेंट
भाई छोड़ो यार ये तो बहुत अजीब सा है हाँ सर्बिया और भी एक बात कर रहे हैं हाँ नहीं 27 बताओ अभी तो फिर वही चीज पढ़ाने लगेंगे तो ये तो सर्बियन प्रीजमेंट आ जाएगा ना पूरा
सेक्शन 27 एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी
अब ये बड़ा भयंकर है देखिए एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू आपके प्रॉपर्टी के राइट को ही एक्सटिंग्विश कर दिया है सेक्शन 27 मैंने कहा था एक्सेप्शन है पूरे लिमिटेशन एक्ट का लिमिटेशन एक्ट रेमेडी बार करता है प्राइमरी राइट नहीं खत्म करता है मगर 27 क्या कह रहा है एक्सटिंक्शन ऑफ टाइटिल, आपके टाइटिल को ही खत्म कर दे रहा है, यही वो सेक्शन है जिसको एडवर्स पोजीशन कहते हैं। यानी 27 ऑफ द लिमिटेशन है कपूल विद द आर्टिकल 64 एंड 65 द रूल ऑफ एडवर्स पोजीशन डेराइव। एडवर्स पोजीशन का मतलब आप किसी की जमीन पे एडवर्सली काबिज हो जाओ, बिना उससे परमिशन लिए काबिज हो, उसकी नज़रों में काबिज हो, ओपनली पीसफुली आराम से काम करते रहो, जमीन पे कब्जा बनाए रहो, और अगला आपको 12 साल तक कोई रोक टोक 12 साल तक ना करे, तो कानून मानता है कि तुमको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं कर सकता है वो प्रॉपर्टी के लायक नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है। ठीक है, अपनी संपत्ति का देख रेख करना सीखिए, उसमें फेंसिंग कराइए, उसमें सब कुछ कराइए, ये बहुत बड़ा नियम है। अगर आप 12 साल तक छोड़ दिए और कोई कामिल काबिज हो गया उस पर और ओपनली चुपचाप नहीं कि रात में 2 बजे आप चुप्पे से गया फिर सुबह सुबह भाग गया, ये नहीं, ये डिस्गाइज नहीं हो, कैसा हो, खेती बाड़ी कर रहा, ओपनली कर रहा है, काट रहा है, जोत रहा है, बो रहा, आराम से मजे से, आप आराम से शहर में पड़े हैं कि चलो कोई नहीं, ऊपर वाला तो है ही है, तो ऊपर ही वाला है, नीचे वाला आपकी मदद करने वाला, अगर ये काम कितने दिन कार्यक्रम चालू रहा, 12 साल। इसीलिए आप लोग देखते होगे जब लोन या मार्गेज एनईसी बनवाते हो तो बैंक कहती 12 साल निकलवा लो, इस प्रॉपर्टी का पीछे जाके 12 साल तक देख लो कि किसी का कोई कब्जा तो, क्योंकि अगर कब्जा है तो वही जीत जाएगा, फिर हमको क्या मिलेगा। इसीलिए 12 ईयर्स हमेशा बोला जाता है, प्रॉपर्टी आज लोन होनी है आज से कितने साल पुराने तक देखते हैं, 12 साल चेक कराते हैं, इसीलिए इसी लॉजिक पे। तो लेट अस स्टार्ट सेक्शन 27।
सेक्शन 27 ध्रुव, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हियर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड।
फिर से पढ़ देगा।
एट द डिटर्मिनेशन of the period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished।
कह रहा है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन आप रखे हो, अपना टाइटल अपने पास रखे रहिए, इसमें कह रहा कुछ नहीं, कह रहा अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई और पोजेशन में आ गया है तो इस लिमिटेशन एक्ट में जितना समय दिया उसके बीच में ही केस कर लेना, अगर वो समय बीत गया तो आपका टाइटल जो है ना उसको धरे रहिए, समझ गए ना। अब जो 12 साल तक पा गया अब उसके बाद आप उसके ऊपर केस ही नहीं कर सकते, जब केस नहीं कर सकते तो फिर आपका टाइटल क्या हो गया, एक्सटिंग्विश्ड हो गया, और नया टाइटल किसको एक्रूड हो जाएगा, वो जो 12 साल तक, क्यों मैं 12 साल बोल रहा हूं, क्योंकि आर्टिकल 64 पढ़ दो लिमिटेशन एक्ट आज, क्योंकि इसमें लिखा लिमिटेशन एक्ट में जितना समय है उतने दिन पे रिकवर कर लीजिए पोजीशन, और अगर नहीं करे तो फिर आपका राइट खत्म। आर्टिकल 64 देखो शेड्यूल में, 64-65 दोनों इसी पे डील करता है, इसके साथ हमेशा आर्टिकल 64 और 65 यही एडवर्स पोजीशन है। जिनको और थोड़ा ज्ञान लेना होगा घर पे नेटवर्क पे डालना, पूरा भंडार पड़ा है ज्ञान का, तो एकदम भंडार पड़ा है, जरूरी नहीं मोए मोए देखो, ये सब भी देखो, बहुत भंडार है।
ज्ञान के रथ पर सवार हो जाए,
हाँ ज्ञान के रथ पर सवार हो, ये इतना कुछ है ना कि पूरा बहुत ज्यादा गागर में क्या पड़ा हुआ है, बस आपका छोटा सा मोबाइल गागर है और उसके थ्रू आप एंट्री करते हो तो पूरा इंफॉर्मेशन वर्ड आपके सामने खुल जाता है। तो देखिए, हाँ
आर्टिकल 64 फॉर पोजेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन एंड नॉट ऑन टाइटल व्हेन द प्लेंटिफ व्हाइल इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन डिस्पोज्ड 12 ईयर्स द डेट ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्पोजिशन
12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्लेंटिप महोदय को डिस्पजेस कर दिया गया उनकी प्रॉपर्टी से कोई, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, भारत में बहुत चलता भैया, भारत में इसको पता नहीं क्यों हटा देना चाहिए ना, मगर ये नहीं, भारत में ब्रिटिशर्स ने यहाँ लग के रखा कि जो दबंग होगा वही पूरी जमीन को, यहाँ नहीं होता एक एक मसल बोलते हैं कब्जा कर लो फिर देख लेंगे, बार बार यही तो ना भूम आपके क्या कहते हैं, पहले क्या करा लो, क्यों आखिर इसी सब के लिए ना? अब आपके चाचा बाबा जमीन हर जगह खरीदे हो खरीदे हो, कब्जा अगर नहीं है बेटा तो कागज लेके उसको घूमते रहो, या तो आप सूट फाइल कर दो पहले ही, क्या करो। तो यहां क्या कह रहा है, कह रहा है पजेशन आपका होना चाहिए था, आपको किसी ने डिस्पजेस कर दिया, आपको उठा के भगा दिया, अब क्या आप चुपचाप जाके क्या करोगे, राधे राधे करोगे? नहीं, यू मस्ट मूव इमीडिएटली टू द कोर्ट फॉर इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेस पासर। आप कहिए कि हमारे मकान में, हमारी जमीन में एक ट्रेस पासर आ गया, काइंडली कोर्ट से कहिए कि उसको ट्रेस पास की हटाइए, और हम आपको कागज प्रूफ कर रहे हैं वो जमीन या मकान हमारा है, वो मेरा किराएदार नहीं है, ना मेरा परमिशन लिया है, उसने ताला तोड़ के अंदर एंट्री किया, हम तो विदेश गए थे, 2 साल बाद लौटे, देखे वो रह रहा, हमको अपने ही घर में घंटी बजा घुसना पड़ा, घुसने अलग नहीं दे रहा। सोचो ना, तुम्हारा मकान हो, ताला वाला बंद करके जाओ, लौटो तो अगला मुजरा कौन? एक बार तो आप बड़े ध्यान से देखोगे यार ये एड्रेस, हाँ, चार बार सोचोगे। तो इस तरह की चीजों से अगर आपको बचना है तो कितने साल के भीतर कर लेना, 12 years। इसी पे तो सेक्शन 27 क्या कह रहा था कि अगर किसी प्रॉपर्टी में आपको पजेशन लेना और आप डिस्पजेस हो गए हैं तो इस लिमिटेशन एक्ट में जितना समय दिया है उतने के भीतर कर लेना, उसके बाद आपका टाइटल क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा मैटर गया, पहले क्या होता था 2018-2018 के पहले क्या होता था कि ये जो एडवर्स पजेसर था वो अच्छा डिफेंडेंट हो सकता था, उसको कोई टाइटल नहीं मिलता था, आप केवल आप कब्जा बनाए रखो। 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप एडवर्स पजेशन के बेसिस पर डिक्लेरेशन सूट फाइल करके मालिक बन जाओ, यानी 12 साल हो गया, अब आराम से कोर्ट में क्या लाओ सूट की, सर उनको जरूरत नहीं है, 12 साल तक देखिए हम काटे बोए, हमारा खसरा खतौनी में भी नाम चढ़ा हुआ है, सब कुछ हम पे कर रहे हैं, अब हमको इसका क्या डिक्लेयर कर दीजिए ओनर, और उनका टाइटल क्या कर दो, एंड कर दो। दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ एडवर्स पजेशन। इसीलिए जो चालाक लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ कोर्ट में, नहीं तो थाने पे केस, कुछ ना कुछ केस करते रहो, उनके पजेशन को डिस्टर्ब करो, जो उनका सेटल्ड पजेशन है उसको 12 साल में क्या कर दो, किसी तरह उसको कंटेस्ट कर दो, इसको क्या बोलते हैं, कंटेस्ट करना। तो दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ एडवर्स पजेशन, आपको एक आध केस हमने दिया सबरवाल वाला, ठीक है। सेक्शन 27 के साथ कौन सा पढ़ते हैं, आर्टिकल 64 कहता है पजेशन पर बेस्ड है, और आर्टिकल जो 65 है वो टाइटल बेस कराता है, कि अगर आपके पास टाइटल है, आप कह रहे हो सर हमारे पास टाइटल है, तो अपना टाइटल भी कितने साल में, अपना टाइटल हो और टाइटल के साथ आपको क्या ले लेना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी का, पजेशन, कब्जा, 9/10 ऑफ ओनरशिप, आप लोग 110 एविडेंस एक्ट पढ़े ना, पजेशन इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ, यानी भारत में पजेशन बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रखिएगा, भारत में कब्जा, इसीलिए हर आर्टिकल आपको सेक्शन पढ़ाए हैं 145 CRPC, वहां भी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसका कब्जा होता है उसी को क्या कराता है, उसका काम है। इसके बाद देखो ध्यान से, तो कुछ हमने अच्छे अच्छे सेक्शंस पढ़ाए, लगभग सब पढ़े हम लोग। हाँ बेटा
सर, सर ये जो एडवर्स पोजीशन वाली बात है सर, सेक्शन 6 सब SRA में जो सूट बाय पर्सन डिस्पोज्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें लिखा है सर कि नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन,
ठीक। सेक्शन 6 ऑफ द SRA, ठीक है, वो स्पेशल सेक्शन 6 ऑफ SRA ये कहता है इफ यू आर इन अ सेटल्ड पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड यू आर इलीगली डिस्पोज्ड, क्या कहता है सेक्शन 6, इफ यू आर इन अ सेटल्ड पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड यू आर इलीगली displaced, dispossessed from that property, then such the person who is displaced file a suit under section 6 of SRA within a 6 month of such displacement. वो जो 6 महीना है वो आपके possession को restore कराने का है. वो 6 महीना क्या restore करा रहा है? अब 6 महीना बीत गया तब आपके पास अपने पोजीशन को कि साहब हमने उसके पहले 12 साल तक उस मकान में रहे हैं उसके बेसिस पर हमको टाइटल दीजिए, उसके लिए आपके पास 12 साल है. पोजीशन रीस्टोर कराने के लिए कितना समय है? सूट फाइल करने के लिए कितना समय है हमारे पास? 12 साल. मगर फिर वो 6 महीने वाला इसलिए क्योंकि सेक्शन 6 में देखिए अपोजिट पार्टी के पास कोई भी रेमेडी नहीं होती है. यानी लैंडलॉर्ड ये नहीं कहेगा आई हैव अ बेटर टाइटल क्योंकि वहाँ टाइटल नहीं देखा जाता है. बट एडवर्स पोजीशन में क्या देखा जाएगा? टाइटल भी देखा जाएगा, वो आपका टाइम भी देखा जाएगा पीसफुल. तो केवल सेक्शन 6 जो है ना वो एक SRA, सेक्शन 6 किसका? SRA का सेक्शन 6 एक स्पीडियर रेमेडी दे रहा है टू रिकवर द पोजीशन एंड रेस्ट विल बी डिसाइडेड बाई कोर्ट अंडर सेक्शन 5. बाकी सब डिसाइड किसमें करती है? SRA के 5. SRA का 5 वही तो है सेक्शन 65 आपका है. अरे आर्टिकल 65 है. अब आपको जब सेक्शन 5 में जाओगे तब वहां पर आपको 12 साल वाला क्लेम लेना होता है. तो ध्यान रखना बेटा सेक्शन 6 और इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. सेक्शन 6 केवल हमें पोजीशन को क्या कराता है? फौरी तौर पे रिस्टोर, इमीडिएट लॉ एंड एक्शन ना बिगड़े. आज हम उसको उठा के फेंके, कल वो 4 आदमी लाए हमको उठा के फेंक दे, फेंका फेंकैया चलना. तो लॉ एंड ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो उस समय सेक्शन 6 में कोर्ट कुछ नहीं सुनेगी, बस कहेगी ये क्या थे पोजीशन में? आप कहेंगे हाँ थे, तो आपने इनको बिना कोर्ट से परमिशन के निकाला, तो आप कहेंगे हाँ सर जबरदस्ती पड़े हुए थे, तो आप फिर से इनको वापस करिए और कोर्ट में प्रॉपर सूट फाइल करके इनको क्या करिए? इजेक्ट करिए. तो दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट? ठीक बेटा, आया समझ में? अच्छा ये खासियत है, व्हेन आई डोंट कन्विंस यू आई कैन कन्फ्यूज यू. ये ग्रेट लायर्स की निशानी होती है. व्हेन दे डोंट कन्विंस द कोर्ट लेट इट कन्फ्यूज. 10-20 सेक्शन और बताओ उसको, तो अगला चुप्पे शांत हो जाती है, कहता अरे छोड़ो यार ये अभी तो हम इसी पे चल रहे थे, कहाँ और चले आए, हम तो 6 पूछ रहे थे 5 पे भी आ गए, पता नहीं कहाँ. चलो ठीक है सही होगा. नहीं ठीक भी है, लॉ में यही खासियत है, अगर आपको अच्छी लॉ की नॉलेज है ना तो सीधा सीधा मैटर टेढ़ा कर दो. अब देखिए शेड्यूल है आपके पास, देखिए यू हैव अ शेड्यूल. शेड्यूल से भी 50% क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? शेड्यूल. अच्छा शेड्यूल में देखिए 137 टॉपिक्स हैं. कितने आर्टिकल हैं? जिसमें मैंने कहा था 113 रेजिड्यूरी है. देखिए इसको ध्यान से देखिए ना, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. दिस शेड्यूल इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट. मैंने कहा था सूट, अपील और एप्लीकेशन. पहला पार्ट 113 तक है, देखिए सूट है ना, जितने तरह के सूट्स हैं उनके लिए लिमिटेशन पीरियड है. दूसरा है अपील और तीसरा होगा एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में देखिए रेजिड्यू 137 होगा, जिसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड ना प्रिस्क्राइब हो तो 137 में दिया होगा, 3 साल है ना. और 113 में कह रहा जब किसी सूट के लिए कहीं भी लिमिटेशन पीरियड 112 आर्टिकल तक नहीं है तो फिर कितना जनरल मानते हैं हम लोग? 3 इयर्स. तो 113 कौन सा आर्टिकल है? रेजिड्यूरी, रेजिड्यू आर्टिकल 113. इसके बाद देखिए इसमें अलग अलग लिमिटेशन पीरियड है. हम लोगों ने क्या किया था कि आपको रटवाने के चक्कर में, देखिए नोट्स निकाल लो और देखिए नोट्स हमने आपको जो भेजा उसमें देखिए एक सिनॉप्सिस ड्रा है. डिटेल तो नहीं है, डिटेल तो आप लोग पढ़ेंगे. जैसे डिटेल में मैंने कहा सेक्शन 60 आप लोग पढ़े थे ना, सेक्शन 8 हम पढ़ाए थे जिसमें कहा था बालक अगर बड़ा हो जाए तो कुल कितना साल उसको मिलेगा. बाबा बालकनाथ का बात चल रहा है, राजस्थान का कहाँ गए वो बच्चा बताता, बन ही जाएंगे वो. मौर्य जी कहाँ गए? बाबा अभी बने नहीं ना, अभी नहीं, अभी बात अंडर कंसी, क्योंकि तो रानी साहिबा भी वहाँ है. बाबा को कौन से बेटा है? वो है ना राजकुमारी है ना, जयपुर की हाँ उनके लिए लॉबिंग, अरे बहुत ऐसा आसान नहीं होता राजनीति जितना हम लोग समझते हैं, बहुत ही टफ चीज है। हम लोग तो इंजॉय करते हैं ना, बट दे हैव एक्चुअली अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड दे लाइक दिस। प्रेशर ना हो क्या, तो राहुल गांधी काली हो गए तो क्या मतलब है, तो प्रेशर तो होना ही चाहिए। आप सब देखिए सेक्शन 60, अरे आर्टिकल 60 करेंगे, 64 करेगा, 62, 63 भी कर लीजिएगा, देखिएगा रिडम्पशन और मॉर्गेज के लिए है। 62 देखो किसके लिए आया हुआ है ना, मॉर्गेज है ना, जरूर देखिएगा उसमें अलग अलग समय है। मॉर्गेज के क्लेस में रिडम्पशन और फोरक्लोजर, ये सब 30 साल होते हैं ना, सबसे ज्यादा यही है ना। अच्छा ध्यान रखिएगा, सबसे जो एक साल टार्ट के लिए जनरली कितना होता है, एक साल, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 साल, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 12 साल, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 3 साल, मोटा मोटा आपको बता रहे हैं ये सब। देखिए जनरली है, सुप्रीम हाई कोर्ट में अपील करने के लिए आपको 90 दिन देगा, हाई कोर्ट दूर होता है ना डिस्ट्रिक्ट से, मगर फर्स्ट अपील के लिए 30 दिन होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट में अपील करना कितना समय लोगे, जनरल रूल समझिएगा। अगर आप सेकेंड अपील कर रहे हो, हाई कोर्ट में अपील हो रही, तो कितना दिन होगा, 90 डेज, और अगर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट में ही अपील होना है तो 30 डेज। ये सब लॉजिक है, और इसी लॉजिक पर बेस करके देखिए, आपको चार्ट हम लोग बना दिया, निकाल लो वही चार्ट नोट्स वाला। टार्ट का एक साल होता है, टार्ट का हमेशा कितना होता है, जनरली टार्ट का एक साल होता है, और सबसे कम होता है 10 दिन, 10 दिन है। ऑर्डर 37 CPC का समरी सूट में ना, डिफेंडेंट के पास केवल कितना दिन दिया था, 10 डेज, 10 दिन सबसे कम वही है। नोट्स पे हमने बना के दिया है, एक बार अंकित सर पढ़ दे रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूं, हम लोग का ये एंड होगा। अच्छा कल क्या हम लोग पढ़ाएंगे, 134 से ना स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ,
शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट, फर्स्ट सूट रिलेटिंग टू अकाउंट 3 ईयर, सूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट।
अच्छा ये सब देखना अपना, आप सब बेरेक्ट साथ निकालो, देखो हम बताते चलना है। हमने तो यहाँ एक जनरल लिख दिया रटने के लिए, क्योंकि सब रट पाना पॉसिबल नहीं, पर आप देखो फर्स्ट पार्ट में 10 पार्ट है ना, पहले पार्ट में देखो, पहला अकाउंट से रिलेटेड है, पहला वाला किससे रिलेटेड है, अकाउंट से। देखिए हम लोगों ने अपने नोट्स में लिखा कितना, अकाउंट से रिलेटेड कितना है,
3 ईयर्स।
दूसरा देखिए
कॉन्ट्रैक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट भी कितना होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 साल, ठीक।
सूट रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन 3 ईयर्स,
कोई भी डिक्लेरेशन कराना हो अपने राइट विट का कितना होगा, 3 साल।
सूट रिलेटिंग टू डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट 3 ईयर्स,
हाँ ठीक है। कैंसिलेशन कराना हो कोई, अगर आपको सेल डीड कैंसिल कराना हो, वसीयत कैंसिल कराना हो, तो कितना साल मिलता है, 3 साल। लाइफ लॉन्ग तो वेट नहीं करेगा ना, कितना कितना साल की बोलती, हाँ या तो प्रूव कर दो सर हमारे साथ क्या हुआ, फ्रॉड, तो फ्रॉड वाले में कौन सा लग जाएगा, सेक्शन 17, और जब आपकी नॉलेज होगी उस दिन से 3 साल, वेरी गुड। हाँ,
सूट रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी 3 ईयर्स, 6th है आर्टिकल 113, सूट फॉर विच देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड 3 ईयर्स,
रेजिड्यू होता है ना, इसको रेजिड्यू कहते हैं, ठीक।
7th है आर्टिकल 137, अदर एप्लीकेशंस 3 ईयर्स रेजिड्यू आर्टिकल,
ये भी रेजिड्यू आर्टिकल 137 भी। हां,
8वां है सूट्स रिलेटिंग टू इमोल प्रॉपर्टी
12 ईयर्स होगा,
इसमें आगे लिखा नहीं है
12 ईयर्स, हां आगे आ रहा है।
रिडम्पशन एंड फोरक्लोजर 30 ईयर्स,
इमोल प्रॉपर्टी देखो जनरल कर दिया ना, इमोल प्रॉपर्टी आपने हेडिंग डाला, सूट रिलेटिंग टू इमोल, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर मॉर्गेज में रिडम्पशन कराना है तो कितना, 30 साल, और देखो
एडवर्स पोजीशन 12 ईयर आर्टिकल 64,
ये तो 12 साल था ना, ठीक है।
आर्टिकल 119 फॉर सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रेशन अवार्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ द फाइलिंग ऑफ द अवार्ड, द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग द सूट बाई अ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर वुड बी 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द अमाउंट वॉज पेड बाई द श्योरिटी टू द क्रेडिटर, द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट बाई अ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर वुड बी 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द अमाउंट वॉज पेड बाई द श्योरिटी टू द क्रेडिटर, आर्टिकल 65 फॉर अ सूट ऑफ For a suit for possession of immovable property based on title, period of limitation is 12 years from the date when possession of the defendant become adverse to the plaintiff. The period of limitation for a suit related to tort mentioned in the schedule of the act
tort is 1 year. मेरे कहा से 90-100 के बीच है, tort के लिए कितना होता है, assault, battery, इन सब के लिए कितना है,
one
year ना, one year, but tort के लिए हमेशा 1 साल याद रखना। ये मोटा मोटा हमने याद करने के लिए, बाकी तो एक बार आप शेड्यूल पे नजर डाल लीजिएगा, मगर अगर समय नहीं तो ऐसे याद रखा जाता है।
सूट रिलेटिंग टू टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर कंपनसेशन इज 3 ईयर।
अब ये 3 में आता है, हमने कहा टॉर्ट के लिए 1 साल है ना, बट ट्रेसपास में कंपनसेशन के लिए 3 साल है। ट्रेसपास के मामले में क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई ना, तो वहाँ 3 साल हो गया। हाँ,
पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सेटिंग असाइड एन एक्स पार्टी डिक्री 30 डेज।
ठीक है।
रिविजन टू हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी 90 डेज, अपील अगेंस्ट डिक्री और ऑर्डर बिफोर द हाई कोर्ट इज 90 डेज।
हमेशा हाई कोर्ट जाने के लिए कितना समय दोगे? 90 दिन। ठीक है।
द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट बाई ए कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट इज 30 डेज।
ठीक है।
द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर टू रिस्टोर अ सूट डिसमिस फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस इज 30 डेज। सूट फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट फ्रॉम द ड्यू डेट शैल बी 3 ईयर्स। द मिनिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द लिमिटेशन एक्ट इज 10 ईयर्स, आर्टिकल 112
होगा ना,
10 डेज। बताइए, साल साल चल रहा
है, नहीं ये अचानक घपला हो गया ना। ऑर्डर 37 है ना, समरी सूट पे 10 दिन मिलता है, केवल 112 आर्टिकल है। पूछा जाए मिनिमम किस में है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 112 ना,
अच्छा 112 लिखा है
इसमें, 12 है उसमें, कितना है देखो 118 कर लीजिए इसको सही करो। देखो 118 बता रहे हैं बच्चे, हाँ 118 है, 10 दिन लिखा है ना, 10 डेज। समरी सूट में होता, आप पढ़ाएंगे ही तो बताएंगे क्या होता समरी सूट।
हो गया।
अच्छा, दिस इज वेरी हैप्पी हैप्पी एंडिंग ऑफ लिमिटेशन एक्ट। 2 दिन का मैंने लिमिटेशन बोला था और 4 दिन का, ये 6 दिन हम लोगों ने आपसे एक्स्ट्रा लिया है। कल से फिर अपने हम लोग रूटीन पे आ जाएंगे। आई थिंक 32nd लेक्चर है ना, हाँ चेक कर लेंगे एविडेंस एक्ट में। तो आज के बाद अब ये एक्स्ट्रा फैक्ट वाला ख़त्म हुआ, अब हम लोग रूटीन पे आ जाएंगे। तो आज की हम लोग क्लास बंद करते हैं, आप सब देखिएगा ऑनलाइन ऑफलाइन। थैंक यू वेरी मच।